إليه مرجعكم جميعا، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کی پیشی اللہ کے آگے ہوگی، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اور یہ جو کہا نا مرجعکم جمیعا، جمع سب کو جمع ہونا ہے، امیر کو، غریب کو، چھوٹے کو، بڑے کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دور تک جو لوگ ہیں اور آخری جو انسان ہے، سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں گے. پھر فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. اور یہ اللہ کا جو پکا وعدہ ہے کون سا، کہ قیامت آئے گی، کائنات بکھر جائے گی اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کو زوال ہے، ہر جوانی کو، ہر بہار کو، ہر چیز کو جو دنیا میں ہے نا، اس کو ٹوٹ پھوٹ جانا ہے، بکھر جانا ہے. وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ سچ ہے، اللہ کا یہ وعدہ پکا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ دنیا میں وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مان رہے، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، رسول کو جھٹلا رہے ہیں، تو جب سب اللہ کے پاس جمع ہوں گے جو اللہ کا سچا وعدہ، پھر ہوگا کیا؟ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، بے شک پیدائش کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس رب نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا، وہ رب جو انسان کی ابتدا کرتا ہے، وہی رب تو ہے جو دوبارہ انسان کو جو ہے وہ اٹھا کر کھڑا کرے گا. جب انسان مر جائے گا تو پھر اس کو اٹھا کر کھڑا کرے گا حساب کتاب کے لیے. یہاں پہ دراصل اس بات کا انکار ہے لوگوں کا، یہ دعویٰ کہ جب مر جائیں گے تو ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا ایٹ ڈرنک میری اینڈ ڈائی، کہ یہ زندگی جو ہے بس مزے کرنے کے لیے، کھائیں پیئیں مزے کریں اور پھر مر جائیں گے اور ختم ہے نا. تو یہ جو میٹیریلسٹ اور دہری قسم کے لوگ ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے یہی سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بے شک پیدائش کی ابتدا بھی اسی نے کی، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا. اور یہاں سے آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. یہ جو ہے نا قیامت کا اصل مقصد بتایا جا رہا ہے کہ پیدا کیوں کیا جائے گا، لوگوں کو جمع کیوں کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اور جو جزا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی شرط بھی بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں جزا دی جائے گی تو جزا دینے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا، بالقسط، پورے پورے انصاف کے ساتھ، پورے پورے عدل کے ساتھ. تو قیامت کا اصل مقصد بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں قیامت کیوں آئے گی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیوں کرے گا. وہ رب جس نے انسان کو بغیر کسی مثال کے، کسی تمثیل کے، وہ رب جس نے انسان کو بغیر کسی مادہ کے، پہلے اس کی کوئی شکل بھی نہیں تھی انسان کی، انسان کو پہلی دفعہ جب پیدا کیا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پیدا شدہ مخلوق کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کر دے. پہلی دفعہ چیز بنانی مشکل ہوتی ہے نا، دوسری دفعہ تو مشکل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا جو ہے وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور پھر پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں سے حساب کتاب لے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جزا دے، لوگوں کو بدلہ دے کہ دنیا میں انہوں نے جو ہے وہ کیسے عمل کیے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آیت کا حصہ بڑا ہی سخت ہے، لِيَجْزِ الَّذِينَ، تاکہ اللہ جزا دے آمنو ایمان لانے والوں کو، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کرنے والوں کو جزا کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. اب دیکھیں اگر کوئی شخص ایمان بھی لایا ہے، بظاہر اچھے عمل بھی کر رہا ہے، لیکن نیت میں اخلاص ہی نہیں ہے، دکھاوا ہے، منافقت ہے، اور وہ جو عمل اس نے کیے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں کہ نہیں، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. تو اس لیے یہ آیت کا حصہ بڑا سخت ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو کہ عمل کرتے ہیں اور اچھے سے عمل کرتے ہیں لیکن دنیا ان کو کریڈٹ نہیں دیتی, شاباش نہیں دیتی, ان کے ایمان اور عمل صالح جو ہے اس کے باوجود وہ دنیا میں بڑی مشکلات میں رہتے ہیں اور کافر وہ بڑے فائدوں میں رہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کا انصاف اللہ ہی کرے گا. اور بعض اوقات جو ہے ظاہری طور پر جو ہے مثلا ایک آپ 10ویں پارے کا بار لمحوں کا پیپر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر شخص جواب دیتا ہے, اس میں ٹیچر جو ہے اس کے نمبر لگاتی ہے, تو جو لکھا ہے اس کے مطابق لگائے گی نا. لیکن ہر ایک کے حالات کتنے مختلف تھے, کون بیمار تھا, کون تندرست تھا, کون بوڑھا تھا, کون جوان تھا, کس کے پاس سہولت سے وقت نکلا, کس نے مشکل سے نکالا, کس کو آسانی سے یاد ہوا, کس کو مشکل سے یاد ہوا, ہے نا. صحیح عدل کے ساتھ, پورے انصاف کے ساتھ جو رزلٹ ہے یہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا نا, ہے نا. دنیا میں جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتا چلتا ہے نا کہ وہ شخص جو اڑ اڑ کے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, مشکل سے پڑھتا ہے, اسے پڑھا نہیں جاتا, اس کے لیے اجرین ہیں, دو اجر ہیں, ایک پڑھنے کا اور ایک اٹک اٹک کر پڑھنے کا. تو دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے نا, ظاہری طور پر ایک جیسی نماز سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک ہی امام کے پیچھے لوگ ایک ہی امام کی تکبیر پر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے, پھر وہ رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں اور تسبیح اور ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں, ایک اکٹھے سب سلام پھیرتے ہیں, لیکن ایک امام کے پیچھے ایک ہی طرح نماز پڑھنے کے باوجود تمام مقتدی جو ہے نا اجر کے لحاظ سے ان کے مرتبے مقام مختلف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیتیں مختلف ہیں. ایک شخص جو ہے وہ بہت دور سے چل کر آیا ہے, ایک مسجد کے ساتھ ہی اٹھ کر آیا ہے. ایک شخص جو ہے اس نے پوری توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف کی ہے. ایک شخص نماز میں کھڑا تھا لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا, ہے نا, وہ کچھ اور ہی پلاننگ کر رہا تھا, ہے نا. ایک شخص نے ایسے نماز پڑھی احسان کے درجے کی, گویا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور ایک شخص جو ہے اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں جیسے یہاں کھڑا ہوں کبھی اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہوگا اور حساب کرنا ہوگا, حساب دینا ہوگا, اللہ جب حساب لے گا, ہے نا. تو یہ ہے بات کہ جو ایمان اور عمل صالح ہے اللہ تعالیٰ ان کی جزا آخرت میں دے گا, اور پورے انصاف کے ساتھ دے گا, پورے انصاف کے ساتھ دے گا, ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا. آپ دیکھیں کہ پچھلی آیتوں میں آپ نے بات پڑھی جو قرآن کے بارے میں, حکیمانہ کتاب, دوسری بات آپ نے پڑھی نبوت کی کہ نبی بھیجا تو نبی پر ایمان لانا, تیسری بات یہ پڑھی کہ توحید, اللہ کی نشانیوں سے, کائنات کی نشانیوں سے اللہ کو پہچاننا, اور چوتھی بات آپ نے یہاں پہ آخرت کی پڑھی. تو جو لوگ تو ایمان لائیں گے اور پھر اس کے مطابق عمل کریں گے ان کے لیے بھی بدلہ ہے عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. یہ بالقسط اگلی آیت میں بھی ہے, جو لوگ ان چیزوں پہ انکار کریں گے, مانیں گے نہیں, ان کے لیے بھی جزا ہے انصاف کے ساتھ. اور یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے شراب من حمیم, تو انہیں کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے وہ پینے کو دیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے بدلے میں کیا چاہتا ہے, وہ یہی تو چاہتا ہے کہ اس کا وے آف لیونگ اچھا ہو, اس کا کھانا پینا اچھا ہو, اس کا سٹیٹس اچھا ہو, اس کو اوڑھنے پہننے کو اچھی چیزیں ملیں, ہے نا. تو انسانی زندگی میں جو بشری حاجتیں اور بشری تقاضے ہیں انسان ان کو بہترین چاہتا ہے. تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی رنگ رلیاں, دنیا کے مزے لوٹنے کے لیے اس نے اللہ کی نافرمانی کی, تو بھول گیا کہ آخرت میں ان کے پینے کے لیے حمیم ہے, زخموں کا دھوون ہے, زخم پیپ ہے, زخموں کا جو کچ لہو ہوتا ہے وہ ہے, گرم کھولتا ہوا پانی ہے. آپ کو پتا ہے نا جب پیاس لگے تو دل چاہتا ہے کہ اس وقت کوک بھی نہ ملے, ٹھنڈا پانی ملنا چاہیے, گلاس سادہ ٹھنڈا پانی کا, تو پھر لگتا ہے کہتے ہیں ہاں پیاس بجھ گئی نا. تو جب وہ پانی مانگیں گے اور جہنم کی آگ میں ہوں گے اور پانی ایسا دیا جائے گا جو نقطۂ عروج پر ہوگا, بہت گرم ہوگا, اور وہ اور تھونس لگائے گا اور ان کی پیاس جو ہے نا اور لگے گی, اور پی بھی نہیں سکیں گے, حلق سے اترتا ہی نہیں نا اگر پانی گرم ہو اور سخت ہو. اللہم لا تجعلنا منہم, یا اللہ تو ہمیں لوگوں میں شامل نہ کرنا. عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. मेरी बहनों, जहन्नुम क्या है? हर दुख, तकलीफ, परेशानी, गम, मुसीबत, है ना, उलझने, उदासियां। दुनिया में जितनी भी परेशानियों को आप जमा कर सकते हैं और जो उसका तसव्वुर कर सकती हैं, वो सब, उसके अलावा और बहुत कुछ भी, उन सबका मजमुआ जो है ना, वो जहन्नुम है, है ना। दुनिया की मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां, जरा उनको आप जमा करें और इंसान जो उनको बर्दाश्त करता है उसकी हालत पर जरा गौर करें, तो अजाबुन अलीम के जहन्नुम जो है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो सजा ही है, और सजा भी ऐसी जो दर्दनाक है। क्यों अल्लाह ताला ये सजा देंगे? बिमा कानू यकफुरून, उस बिना पर जो वो अमल करते रहे। बिमा में ना पूरी कहानी है, जो वो कुफ्र करते थे, जो वो शिर्क करते थे, जो वो निफाक करते थे, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार करते थे, कुरान का मजाक उड़ाते थे, तो दरअसल उनके अमलों के नतीजे में जो है ये सख्त सजा जो है वो उनको भुगतनी पड़ेगी, ये सख्त सजा जो है वो उनको झीलनी पड़ेगी। तो गोया के सूरत यूनुस की आयत नंबर 4 जो है, इसमें कयामत के वकूफ, बारगाहे इलाही में सबकी हाजिरी और जजा और सजा का जो है वो बयान है। और ये बयान और ये बात जो है कुरान मजीद में हमने मुख्तलिफ मकामात पर मिलती है। तो फिर इस आयत पर अमल करने के लिए हमारे लिए उसूल क्या निकलता है कि हम आखिरत पर, कयामत पर ईमान लाएं और उसकी तैयारी करें। और कैसे पता चले कि हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि बाज लोगों को फिक्र बहुत होती है कि टेस्ट होने वाला है, बाज लोगों को ये फिक्र बहुत होती है एग्जाम आने वाला है, बारिश होने वाली है, स्नो आने वाली है। स्नो आती है तो क्या करते हैं? नमक दुकानों में खत्म हो जाता है। जब स्नो पड़ती है तो नमक दुकानों से खत्म हो जाता है कि लोग लाके नमक डाल लेते हैं जो ताकि गिरे ना, स्लिप ना हो। खाने पीने की जरूरतों को अपने घर में रखते हैं कि बाहर गैर जरूरी निकलना ना पड़े। रेन कोट या स्नो कोट उसका इंतजाम करते हैं, ग्लव्स आप लेते हैं। सर्दियों के मौसम में खाने पीने की चीजों का डिफरेंट तरीके से आप इंतजाम करते हैं, है ना। और स्नो को हटाना, उसकी चीजें, तो आप जो कुछ भी होने वाला होता है उसकी आप तैयारी करते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी शादी की दावत मिलती है, कोई कार्ड मिलता है कोई दावत का, तो आप वो कार्ड जब मिलता है तो इनविटेशन आप क्या करती हैं? आप पूछती हैं, देखती हैं कौन बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, कब बुला रहा है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, क्या पहन कर जाना है, क्या लेकर जाना है। और यहाँ दुनिया में बुलाने वाला अपने जैसे इंसान होते हैं, और हमारे इंतजाम देखें, हम कहते हैं कि हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि लोग वाह वाह कर उठे। ऐसा कपड़ा नहीं हो जो दूसरों ने पहना हुआ, ऐसा फैशन नहीं होना चाहिए, ऐसा तोहफा होना चाहिए, ऐसी पैकिंग होनी चाहिए, हमें कैसे लगना चाहिए। तो ये इन्विटेशन भी मिल गया कि लोगों, कयामत आनी है, अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है तमाम अपने अमाल के साथ। फिर सोचिए कि उसकी तैयारी क्या की है। क्या हम चाहते हैं कि सबसे अच्छे अमाल मेरे होने चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि सबसे अच्छी जजा मुझे मिलनी चाहिए, सबसे अच्छा इनाम मुझे मिलना चाहिए? तो फिर उसके लिए ऐसे नहीं कि हाँ बड़ी परेशानी हो रही है कि स्नो होने वाली है लेकिन बाहर खड़े हैं स्नो के अंदर, बड़ी परेशानी हो रही है कि स्नो होने वाली है लेकिन ये कि बाहर खड़े हुए हैं और गाड़ी जो है वो भी खड़ी है, स्नो पर गिर रही है। हम तो भागते हैं ना उसको, उस मुसीबत से कैसे निजात पाए ना। तो इसी तरह फिक्र सबको है कि कयामत आनी है और आखिरत आनी है और मौत आनी है। इसको फिक्र नहीं कहते जब उसकी तैयारी ना की जाए। उसके लिए हाथ मुंह मारने पड़ेंगे, कुछ मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, और आखिरत की तैयारी सहाबा की जिंदगी से समझनी चाहिए। और सहाबा क्या करते थे? दुनिया को हथेली पर जगह देते थे और आखिरत को दिल में जगह देते थे। सहाबा क्या करते थे? सहाबा ने दुनिया को आखिरत का शो रूम समझा। शो रूम में दिखाने की ये चीजें होती है ना, तो दुनिया में जो छोटे मोटे अजाब, परेशानियां, तकलीफें आती थी, वो सोचते थे कि अगर आखिरत में मिली तो फिर क्या होगा, है ना, आखिरत में मिली तो क्या होगा, क्योंकि नमूने है ना। और फिर वो सोचते थे कि नहीं आखिरत में हमें जो है वो कामयाब होना है। वो दुनिया में जीते थे, आखिरत में रहने की प्लानिंग करते थे कि हाँ दुनिया में बस वक्त गुजारना है ना। और आखिरत की फिक्र, कयामत की फिक्र उनको जो है उनके मामलात को ठीक रखती थी। जैसे जबान की हिफाजत करना है, गीबत, चुगली वगैरह, उससे बचना है, جیسے حقوق کو ٹھیک طرح ادا کرنا ہے. اب دیکھیں جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مجھے میرے حقوق ملے, اور جو آخرت کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ تو دوسروں کا معاملہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, ان کو یہ فکر ہوتی ہے میرا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. میں ویسے یہ بیوی کے, ماں کے, دوست کے, ہمسائی کے, بہن کے, بیٹی کے, بھائی کے, جو بھی مرد ہے تو اس کے یہی کردار کہ میرا معاملہ کیسا ہے نا. تو انسان کے رویے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر آخرت کی فکر کتنی ہے. ہنستے ہیں تو کھلکھلا کر نہیں ہنستے, بیٹھتے ہیں تو بھول نہیں جاتے کہ وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں, فون کرتے ہیں تو لمبے گھنٹے ادھر ان کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے, سوتے ہیں تو جو ہے چارپائی کو توڑتے نہیں رہتے, حتیٰ کہ سر تھک جاتا ہے کہ اتنا سو گئے. کبھی اتنا سوتا ہے انسان کہ سر میں درد ہو جاتی ہے زیادہ سونے کی وجہ سے, کمر تھک جاتی ہے کہ اتنا سو لیا. تو اتنا نہیں سوتے صحابہ, کتنا سوتے تھے؟ 4 گھنٹے, اور خلفائے راشدین بن گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کسی نے ایک دفعہ کہا تو کہتے تھے کہ دن میں رعایا کے حقوق ہے, رات کے وقت میں اللہ کے حقوق بندگی کرتے تھے, اٹھ اٹھ کر کبھی نفل, کبھی تہجد, کبھی دعائیں, کبھی استغفار, اپنا محاسبہ کرتے تھے نا. تو یہ ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ایمان لائے ہیں تو عمل صالح کر رہے ہیں, ایمان کا دعویٰ ہے کہ کفر تو نہیں کر رہے. فکر دعویٰ ہے اللہ پر ایمان لانے کا اور دعویٰ ہے قرآن پر ایمان لانے کا, لیکن عمل کتنے ہیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے. پھر آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گواہی دی ہے, دلائل دیے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل اور تماشا نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے؟ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. وہی تو ہے کون؟ الذی, جس نے, کس نے؟ اللہ نے. وہی تو ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا. سورج کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روشن بنایا, ضیاء بنایا. والقمر نورا, اور چاند کو جو ہے وہ چمک دے دی. چاند کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا کیا. وقدرہ منازلہ, اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی. کس چیز کی منزلیں؟ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی. کبھی ہلال ہوتا ہے, کبھی بدر منیر بن جاتا ہے, کبھی پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے نا. تو یہ اس کی مختلف اللہ تعالیٰ نے منظریں مقرر کر دی. کیوں مقرر کی؟ لتعلموا عدد السنین, تاکہ تم معلوم کر لو سالوں کی گنتی کو. والحساب, اور تاریخوں کا حساب. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ پہلی جو دلیل دی وہ کیا ہے؟ سورج کی. اور آپ دیکھیں کہ گاؤں کا بدو, دیہاتی علاقے میں رہنے والا, پہاڑی علاقے میں رہنے والا, شہری علاقے میں رہنے والا, جو بھی آنکھ کھولے گا اور آنکھ کی روشنی سے جو اللہ نے بنائی عطا کی ہے, اس کو جب دیکھے گا تو اس کو سورج چمکتا ہوا نظر آئے گا. یہ ایک ایسا معجزہ ہے, یہ ایک ایسی دلیل ہے. ان پڑھ اور پڑھے لکھے, غریب اور امیر, دیہاتی اور شہری, سب کو جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو آخرت کی دلیل دی ہے کہ کائنات میں جو اللہ کے کام ہر طرف نظر آ رہے ہیں, اور ان میں اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیاں, ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ سورج ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے, اور یہ بھی نوری کی ایک قسم ہوتی ہے, ایسا نور جس میں روشنی بھی ہے چمک بھی ہے نا. اور روشنی اور چمک کے علاوہ حرارت, تپش اور رنگ میں سرخی بھی ہوتی ہے. تو سورج کی روشنی ہوتی ہے, تھوڑی سی اس میں گرمی بھی ہوتی ہے نا, اور تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ تپش بھی ہوتی ہے, اس کے رنگ میں تھوڑی سرخی بھی ہوتی ہے. تو سورج جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سورج ہے اسی کی وجہ سے یہ موسم بدلتے ہیں, ہے نا. نظام اوقات ہے نا سورج کے, ساری دنیا کو روشن کرتا ہے. کبھی گرمی, کبھی سردی, کبھی خزاں, کبھی بہار, مختلف موسم. اور ہر موسم ہماری دنیا کی زندگی کے لیے, ہماری بقا کے لیے یہ ضروری ہے. سورج अगर ना चढ़े तो इंसानियत ठिठर कर रह जाए, इंसानियत मुंजमद हो जाए। और आप देखें कि कुछ दिन अगर सूरज नजर ना आए तो कैसा लगता है, और वैसे भी कैसी घबराहट और उदासी होती है जब सूरज नजर नहीं आता। सूरज क्या थोड़ा सा अपना रुख दिखाता है तो लगता है कायनात जो है वो जी उठी, कायनात जो है वो जगमगा उठी। कितना हसी है अल्लाह का ये मौजा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मेरा ये मौजा जो हर रोज हर एक को नजर आता है, अगर आंखों वाला आंखें ही बंद कर ले और कहे कि सूरज तो सूरज नहीं है, तो फिर उसकी आंखें बंद करने का क्या इलाज किया जाए। लोग मौजा मांगते थे ना रसूल अल्लाह से, कहा कि मेरी तौहीद की दलील ये है, आखरत की दलील क्या है कि मैंने सूरज को पैदा किया और रोशनियां वाला, वल कमर नूरा, और चांद को भी चमक अता की। और आप देख लीजिए कि चांद जो है वो सूरज से रोशनी लेता है ना, क्योंकि चांद का जो नूर है, बाज लोग ये भी कहते हैं कि सूरज की रोशनी अपनी जाती है, चांद की रोशनी सूरज से हासिल की हुई है ना। और सूरज जो है जब चमकता है जमीन भी रोशन हो जाती है। तो दरअसल और बाज लोग ये कहते हैं कि नूर जो चांद का नूर है, इससे मुराद ये है कि इसमें रोशनी भी है और इसमें चमक भी है, और इसकी रोशनी में एक खुनक है, एक ठंडक है, जबकि सूरज की रोशनी में तपिश है और चांद की रोशनी में ठंडक है। तो चांद की चांदनी है ना, और चांद जो है ये ऐसी रोशनी देता है कि इससे भी रास्ते रात के वक्त रोशनी होती है, लोग सफर भी करते हैं। और ये चांद ऐसा है कि यूं लगता है कि चंदा मामू जहां जहां आप चल रहे हैं वो आपके साथ चलता जाता है ना, और बड़ा भला लगता है कि रात के वक्त जो आसमान पर जो है वो चलता है। और दूसरा चांद की एक और अहम बात क्या है कि चांद की ना मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जैसे बतले मूसी जो हैं उनके नजरिए के मुताबिक, उनकी हैयत जो उन्होंने हैयत दानों ने जो आसमान पर चांद की के बारे में बताया, वो कहते हैं कि इसकी 28 मंजिलें उन्होंने मुकर्रर की, 28 के दौरे नबी में यही नजरिया उस वक्त ज्यादा मकबूल था और दरसगाहों में इसकी तदरीस होती थी के, और अगर आज भी इसकी 28 मंजिलें ली जाए तो इससे मुराद जो है ये इसकी 28 मनाजिल हैं, इसकी 28 शक्लें हैं। और इसकी एक दलील भी है सूरत यासीन में, वल कमर कद्दरनाहु मनाजिल हत्ता आद कल उर्जून कदीम, कल हाँ के चांद जो है अल्लाह ने उसकी मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, हत्ता के वो जो है वो कैसे हो जाता है, खजूर की पुरानी शाख की तरह जो है वो हो जाता है। तो जो चांद है ना, चांद और सूरज में फर्क है। और कुछ लोग जो हैं जैसे कैलेंडर जो हैं वो चांद का कैलेंडर जो है उसके मुताबिक अमल करते हैं, कमरी तकवीन के मुताबिक, जैसे इद्दत है, रजात है, और इस्लामी जो अहकाम है, हज है, रोजा, जकात वगैरह, ईदे हैं, इन सब का ताल्लुक जो है ना ये चांद के कैलेंडर से है। और इसकी खसूसियत क्या है कि ये बड़ा सादा है और इंसान जो है बड़ी आसानी से जो है वो इसको, हर शख्स जो है वो देखता है कि चांद निकल आया है, अब चांद जो है वो मुकम्मल बद्रे मुनीर बन गया है, अब चांद फिर छोटा होना शुरू हो गया है ना, एक सफर है जो मसलसल चांद जो है वो करता चला जा रहा है। और फिर आप ये भी देखें कि चांद का जो इसका कैलेंडर है कि इसके महीनों के दिनों की तादाद को बदला नहीं जा सकता, हमेशा चांद का साल जो है 12 महीने का ही होता है। तमाम दुनिया के लोगों के लिए ये मुसावात का उसूल देता है, हमागीरी का एक उसूल देता है, और दुनिया के रस्म और रवाज चांद पर कोई असर नहीं डाल सकते कि चांद जो है वो अपने मुकर्रा वक्त पर निकलता है और फिर मुकर्रा वक्त पर जो है वो गुरूब हो जाता है। तो गोया के यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि चांद जो है एक रात और एक दिन में अपनी मखसूस हरकत के साथ, अपनी चाल के साथ चलता रहता है, और इस तरह वो 28 मंजिलें तय करता है। हर रात को एक मंजिल पर पहुंचता है जिसमें कभी खता नहीं होती, जो पहली मंजिलें हैं इसमें ये छोटा बारीक सा होता है, जैसे एक हलाल, जैसे एक निशान सा ना, फिर यहाँ तक कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब 14वीं मंजिल पर पहुंचता है तो बदरीज बड़ा होकर वो बद्रे मुनीर बन जाता है। 14वीं शब को या 14वीं मंजिल पर वो मुकम्मल हो जाता है, बद्रे कामिल उसको कहते हैं। इसके बाद फिर वो सुकुड़ना और बागदीक होना शुरू होता है, हत्ता के आखिर में एक या दो रातों में वो छुपा रहता है, मस्तूर बिल्कुल छुपा होता है ना, फिर हिलाल बनकर तुलू होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी बारीक कभी मुकम्मल फिर घटना शुरू होना? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वक़द्दरहु मनाज़िला, ये इसलिए इसकी ये चाल और इसकी ये मंजिलें हैं, लितअलमू अदद सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम इसके जरिए से सालों और तारीखों के हिसाब मालूम कर सको। है ना, चांद के चलने से महीने और साल बनते हैं, हर चीज का हिसाब करने में आसानी होती है कि हर साल के 12 महीने, हर महीने के 29 या 30 दिन और एक दिन 24 घंटे रात और दिन, है ना। तो इस तरह कभी जो है वो सर्दी और गर्मी में दिन छोटे बड़े भी होते हैं, तो इस तरह लोगों को अंदाजा होता है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। इसी तरह हज, नमाज और नमाजों के औकात हैं, या फिर हज है, रोजा है, जकात है, तो इस तरह इंसान को जो है वो एक रहनुमाई जो है वो मिलती है। तो यहाँ इसी बात का जिक्र किया जा रहा है ताकि तुम इससे जो है वो क्या करो कि दिनों और सालों के जो है वो हिसाब को मालूम कर सको। मा खलक अल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक, अल्लाह ने सब कुछ जो है वो बामकसद ही बनाया है। मा खलक अल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक, पीछे क़यामत के बारे में कहा था ना, वादल्लाहि हक्का, तो जब दुनिया में जो कुछ है वो हक है और रोज तुम्हें नजर आता है सूरज और चांद, तो क्या क़यामत बरहक नहीं है? आनी तो है ही, हिसाब किताब तो होना ही है, जरूरी है। यहाँ पर हम ये भी देख लें कि जो हक है तो इसमें अल्लाह ताला ने दरअसल ये बात की तरफ इशारा किया है कि सूरज और चांद जो है इसकी जो गर्दिश है इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे नमाजों के औकात, कारोबार के औकात, ये सूरज की गर्दिश से हमें मुतय्यन होते हैं ना। नमाज, सूरज ढल रहा है, सूरज निकल रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है तो नमाज हमने पढ़नी है, है ना। और इसी तरह चांद से हमें कुछ इबादतों का पता चलता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारी, ये जो सूरज और चांद को पैदा किया ये मेरे इतने बड़े करश्मे हैं कि इसके जरिए से तुम्हें मुझे पाना चाहिए, तुम्हें मेरी बंदगी करनी चाहिए, तुम्हें मेरी इबादत करनी चाहिए। आमतौर पर दुनिया में लोग कहते हैं कि, कोई कहता है ताजमहल बड़ी अच्छी चीज है, कोई कहता है लाल किला, कोई कहता है कि लाहौर और दिल्ली की जामिया मस्जिद, कोई बादशाही मस्जिद को कहता है, कोई फैसल मस्जिद को कहता है, और यहाँ पर भी कोई क्या कहता है कि ये जो टावर है सीएन टावर जो है, स्काई डोम है, ये बड़ी बहुत बड़ी चीजें हैं, ये निशानियां हैं। तो हम तो इसी में खो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी निशानियों में खो जाओ। फिर फरमाया युफस्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, कि अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों को खोल खोल कर बयान किया है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। तो ये निशानियां कौन जो है, निशानियों की तरफ कौन देखेगा, इनसे इबरत कौन हासिल करेगा, तौहीद परस्त कौन बनेगा, क़यामत की तैयारी कौन करेगा, आखिरत की तैयारी कौन करेगा, जो इल्म रखने वाला है। क्योंकि इल्म रखने वाले अल्लाह से डरते हैं, इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो ये है असल बात कि कायनात से अल्लाह ताला जो निशानियां पेश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कायनात में तो रोज सूरज का निकलना और डूब जाना, चांद का तुलू होना और गुरूब हो जाना, ये इस बात की गवाही है कि ये कायनात किसी खलंडड़े का खेल नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये बामकसद अल्लाह ने पैदा किया है। जब इनका मकसद है सूरज और चांद का, तो फिर इंसान का मकसद क्यों नहीं है जो अशरफ अल-मखलूकात में से है। फिर मजीद निशानियों की तरफ इशारा किया, इन्ना फी इख्तिलाफ़ अल-लैल वन-नहार वमा खलक़ अल्लाहु फिस-समावाति वल-अर्ध वल-अर्ध लआयात लिक़ौमिन यत्तकून, बेशक इख्तलाफ में यकीनन उलट फेर में रात और दिन के, कि रात और दिन के बारी बारी आने जाने में, और हर उस चीज में जो अल्लाह ने जमीन और आसमानों में पैदा की है, वमा खलक अल्लाह, और जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है आसमानों में और जमीन में, इसमें किन लोगों के लिए निशानियां हैं? लयातिल कौमी यत्तकून, कौमी यत्तकून उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो बचना चाहते हैं, जो डरते हैं। तो अब यहां पर अल्लाह ताला ने जो है आखिरत की दलील के तौर पर जो है वो रात और दिन को पेश किया। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हर सुबह की एक रात होती है, हर रात की एक सुबह होती है, तो बारी बारी ये सिलसिला जारी है ना, है ना। तो इसी तरह आसमानों और जमीन की तरफ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इशारा किया है कि आसमान और जमीन एक ऊंचाई पर है, बुलंदी पर है, और एक पस्ती पर है, निशेब में है ना, नीचे है आसमान और जमीन। तो रात और दिन और आसमानों और जमीन, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने जो है वो क्यों किया है? अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान जो है वो कायनात पर गौर करे, और इन निशानियों को अल्लाह ताला ने जो है गर्दिश लैलो नहार का जो दर्स है इसमें अल्लाह ताला ये बात बताते हैं कि ये रात और दिन ना दौड़ रहे हैं और दौड़कर ताकुब कर रहे हैं, किसका? इंसान का। कि जिस तरह रात और दिन एक ही फितरत में अंधेरा है, दूसरी की फितरत में रोशनी है ना, एक की फितरत में राहत और सुकून है, दूसरे की फितरत में सरगर्मियों का मैदान गर्म है ना। जो ही दिन की रोशनी होती है तो इंसान उठकर भागना शुरू करता है, जो ही शाम और रात होती है तो ऊंग आने लगती है, नींद आने लगती है। एक में हरकत है, एक में सुकून है, तो दोनों की फितरत और मिजाज देखें रात और दिन का बहुत ही मुख्तलिफ है। तो ये रात और दिन का बारी बारी आना जाना और इनका इनके मिजाज में फर्क होना, ये भी दरअसल कायनात के निजाम रबूबियत पर दलील है। क्या इसका मतलब है कि अगर इंसान गौर करे तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह रात के बाद दिन है और दिन के बाद रात है, इसी तरह जिंदगी के बाद फिर मौत है। जिंदगी में हरकत है, फिर मौत है, मौत है, फिर दोबारा हिसाब किताब है, फिर लोगों को जो है वो उठा खड़ा किया जाएगा। दुनिया है तो इसका जोड़ा आखरत है ना। दुनिया में तुम लोग जो हो वो हमेशा नहीं रहोगे। तो ये पूरा कारखाना जो है अल्लाह ताला इसको चला रहे हैं, रबूबियत ने ये निजाम जो है वो खड़ा किया है, और अल्लाह ताला एक दिन ऐसा लाएंगे कि जिस दिन जिन लोगों ने अल्लाह ताला को पहचाना, रब माना, उनको जो है वो जजा मिलेगी, इनाम मिलेगा, और जिन्होंने ना पहचाना उनको जहन्नुम में जो है वो डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला चाहते हैं कि जिद, ये रात और दिन की जो जिद है ना, इस पर लोग गौर करें, और हासिल ये है कि इंसान की रहनुमाई के लिए फिर आखरत और जजा और सजा है, यानी इंसान को जो है आखरत की तरफ सफर करना है, या फिर जजा मिलने वाली है या फिर सजा मिलने वाली है। और यही शऊर जब इंसान के अंदर पैदा होता है ना, इसी को तकवा कहते हैं, इसी को कहते हैं के लिए कौमी यत्तकून, कि वही लोग इससे फायदा उठा सकते हैं जो कि अल्लाह से जो है वो डरने वाले हैं, जो कि अल्लाह से, अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले हैं, जो हर वक्त ये फिक्रमंदी रखते हैं कि कहीं अल्लाह ताला जो है वो हमें पकड़ ना ले। तो ये बड़े खूबसूरत दलाइल हैं। और अहले मक्का मौजा मांगते थे ना, हिस्सी मौजा, तो जवाब में जो है सूरज, चांद, रात, दिन, आसमान और जमीन, और जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, अल्लाह ताला ने इनको जो है वो मौजे के तौर पर जो है वो पेश किया है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारे मौजा देखने के बाद, ये सूरज की रोशनी, ये चांद का चमकना, ये रात की चादर का फैल जाना, ये दिन की सफेद रोशनी का जो है वो हर तरफ नमूदार हो जाना, फिर भी लोग जो हैं तो मुझे भूल गए। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, कैसी अजीब बात है, कैसी अनहोनी बात है, कैसे अफसोस की बात है कि बेशक ये लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते। ये लोग ये समझते हैं कि मुझसे मुलाकात नहीं करनी, मुझे भूल गए। जिस रब ने ये सारा कुछ बनाया, क्या मरने के बाद इंसान को दोबारा खड़ा नहीं करेगा? इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, हकीकत यह है कि जो लोग हमसे मिलने की तवक्को ही नहीं रखते, उन्होंने सोचा ही नहीं कि मरना है, रात और दिन में से गुजरते हैं, फिर भूल गए कि रात भी आएगी और फिर भूल गए कि दिन भी आएगा, कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत, जिंदगी के मुकाबले में मौत, और फिर सजा और जजा जो है वो मिलके रहेगी। और जब इंसान अल्लाह को भूल जाए, आखिरत को भूल जाए, अल्लाह की मुलाकात को भूलना, हिसाब किताब को भूलना है, जब इंसान इसको भूल जाए तो फिर वो करता क्या है, बरदू बिल हयात दुनिया, और वो दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गया। अल्लाह की मुलाकात को भूलना, दुनिया की जिंदगी पर राजी होना, बेनियाजी की, बेफिक्री की, मनमानी की, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जैसे चाहना वैसी जिंदगी जो है वो उसको गुजारना। तो उन्होंने जो है वो अपनी मनमानी की जिंदगी जो है वो गुजारनी शुरू कर दी। तो अब यहाँ पर जो है उन लोगों का अंजाम बताया जा रहा है जो इन निशानियों से ना, इन निशानियों पर गौर नहीं करते और आंखें बंद रखते हैं। ऐसे ही तो वो लोग हैं वो अल्लाह की मुलाकात को भूलते हैं, और दूसरी बात यह है कि दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए। दुनिया की जिंदगी पर राजी होना, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ये लोग जो हैं दुनिया में ऐसे मुतमिन हो गए कि भूल गए कि हमें मरना है। इनको कभी ध्यान ही ना आया कि हमें यहां से रुखसत होना है ना। तो अगर इनको ये पता चलता कि मरना है और रुखसत होना है, हिसाब किताब होगा, तो फिर वो लोगों के हकूक अदा करते, फिर वो लोग जबान की हिफाजत करते, फिर वो नमाजें पढ़ते, जकात देते, अल्लाह के अहकामात जो थे वो उनको पूरा करते। तो ये तो भूल ही गए, तो इसलिए ना इनको जो है वो अल्लाह की मुलाकात का अंदेशा है, ना आखरत का डर है। तो ये है वजह। तो इंसान की बदअमली की वजह, दुनिया से मोहब्बत करने की वजह, दुनिया में जो है वो गला गला जो है वो यहां तक जो है वो गर्क होने की वजह जो है वो क्या है कि इंसान अल्लाह की मुलाकात को भूल गया। वत्मअन्नू बिहा, और फिर वो इसी पर मुतमिन हो गए, अफसोस इस बात का कि उसी पर राजी हो गए, मुतमिन हो गए कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, तो ये जो इनका बुराइयां करना है, अच्छे अमल नहीं करना है, तो इसकी वजह यह है कि ये हमारी आयात से गफलत बरतते रहे। इन्होंने अल्लाह के कलाम को तवज्जो से सुना ही ना, कि इनको जो ये बात पता चलती कि अल्लाह के पास जाना है और फिर हिसाब किताब जो है वो होना है, तो अगर इनको ये बात याद होती तो फिर वो इस तरह से जो है ना नाफरमानियां नहीं करते। तो ये जो आयत है ना, आयत नंबर 7, ये इस लिहाज से बड़ी खूबसूरत है। ये बात बताती है कि इंसान जब अल्लाह की मुलाकात का इनकार करता है तो उसका कैसा किरदार बन जाता है। तो वो दुनिया के लिए जीता है, दुनिया के लिए, दुनिया पर फरेबता होता है, वो जो कदम उठाता है, वो जो जबान से बोलता है, वो जो हरकत करता है, उसकी दोस्तियां, उसका मिलना मिलाना, लेना देना, उन सब में ही होता है कि दुनिया में फायदा किस चीज में है। वो ये नहीं देखता कि यहां नहीं तो आखिरत में उसको अजर मिलेगा। वर्तमान नू बिहा, फिर उस पर वो राजी भी हो गए कि दोनों दोनों हाथों से वो दुनिया को लूटना चाहता है। और अक्सर असल बात यह है कि ये हमारी निशानियों से गाफिल हैं। कौन सी निशानियां? जिनका अभी जिक्र किया जा रहा है, कुरान भी निशानी, पैगंबर भी निशानी, सूरज भी निशानी, चांद भी निशानी, आसमान भी, जमीन भी, रात और दिन भी। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उलाइक मअवाहुम नारु बिमा कानू यक्सबून, और इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। मावा, आवा ठिकाना, जहां इंसान जो है उसको पनाह मिलती है। जैसे बच्चा नहीं किसी से डरता है, कोई उसको पकड़ना चाहता है, भाग कर माँ की गोद में पनाह लेता है। अब ये लोग भागना चाहेंगे और पनाह लेना चाहेंगे तो जहन्नुम जो है ना, वहीं इनको पनाह लेनी होगी। क्यों? बिमा कानू यक्सबून, इस वजह से कि दुनिया में इनके अमल जो थे वो अच्छे अमल नहीं थे। तो अकीदा है आखिरत के इनकार का लाजमी और कतई नतीजा जो है वो जहन्नुम है। तो जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं और बुराइयां करते हैं, उनको जहन्नुम के सिवा फिर और कोई सजा नहीं मिल सकती। बिमा कानू यक्सबून, ये इनके अपने अमल हैं। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सवाले किए, नेक अमाल करते रहे। यहदीहिम रब्बुहुम, उनका रब जो है वो उनको चलाएगा, उनका रब उनको हदायत देगा, रहनुमाई करेगा। बेईमानिहिम, उनके ईमान की वजह से, क्योंकि वो ईमान ले आए तो ईमान के नतीजे में अल्लाह ताला जो है उन पर जो है वो करम नवाजी करेंगे, उन्हें चलाएंगे। एक तो ये ना कि दुनिया में ईमान जब इंसान लाता है ना, तो साथ साथ फिर अल्लाह ताला उन पर नेकियों के दरवाजे खोल देता है। वो एक कदम उठाता है, अल्लाह ताला 10 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं। वो चलकर आता है, अल्लाह ताला दौड़ कर आता है, कहता है कि तू चाहता है फिर तेरे लिए मैं सीखने के रास्ते खोलता हूँ। तू ईमान ले और तू अच्छा मुसलमान बनना चाहता है तो मैं तेरे लिए राहें खोलता हूँ ना। एक तो इसके दुनिया दुनिया के लिहाज से मानिए कि दुनिया में चाहने वालों के लिए अल्लाह ताला दीन सीखने के रास्ते खोल देता है, अमल करने वालों के लिए उनके अमल के दरवाजे खोल देता है, आसानी पैदा कर देता है, शरा सदर दे देता है उनको। दूसरे इसके मानी मुफस्सरीन ने ये बयान किए हैं कि ईमान की रोशनी होगी और पुल सिरात पे वो भागेंगे, अपने अपने ईमान के मुताबिक वो पुल सिरात, वो जहन्नुम के ऊपर जो एक ब्रिज है जो तलवार से ज्यादा बारीक है ना, तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक, उस पर वो अपने ईमान के नतीजे में जो है ना वो भागेंगे और चलेंगे। और उनके अमल, किसी ने कुर्बानी की है तो कुर्बानी दुम्बा उनके पास होगा, उसके ऊपर चढ़कर वो भागेंगे। और दूसरे लोग उनसे कहेंगे कि हमें थोड़ी सी रोशनी दे दो, नक तबिस नूर ना, कि थोड़ी सी रोशनी हम तुमसे ले लें, लेकिन सदूरी बा लहुम सुअर, तो उनके दरमियान में एक दीवार जो है वो हायल कर दी जाएगी। तो अपने ईमान की रोशनी में वो सफर तय करेंगे। तो दुनिया में भी ईमान रोशनी बनता है, फायदा देता है, और आखिरत में भी। और जब आखिरत में हशर नशर हिसाब किताब होगा तो भी ईमान इस्तकामत देगा, सुकून ठंडक। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम, नेमत भरी जन्नतों में इनके नीचे नहरें बहेंगी। तो आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ऐसी जन्नत में अल्लाह ताला उनको दाखिल करेंगे जो कि नेमतों से भरी हुई है, नईम, हर तरह की नेमत जिसका इंसान जो है वो तसव्वुर कर सकता है ना। तो कायनात अल्लाह ने क्यों बनाई? ताकि लोगों को हदायत मिल जाए, और ईमान लाते हैं तो लोगों को हदायत में बढ़ते चले जाते हैं। हर एक के ईमान और हदायत के मरातिब और दर्जे मुख्तलिफ हैं, इसी तरह जन्नत के दर्जे भी मुख्तलिफ हैं। दुनिया में लोगों के अमल करने के अंदाज मुख्तलिफ हैं, कोई फौरन करता है, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता है, कुछ भी बचा कर नहीं रखता, बहुत मेहनत करता है। कोई जो है वो सोचता है, तरद्दुद करता है, मुतजलजिल होता है, फिर वो अमल करता है ना। आप गज़वे तबूक को ही देख लीजिए, आप रसूल अल्लाह पर ईमान लाने को ही देख लीजिए कि कोई उसी दिन ईमान लाया, उसी वक्त ईमान लाया, कोई कुछ ना कितनी देर जो है वो सोचता रहा ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरह उनकी कदमों के नीचे जो है वो नहरें बह रही होंगी और नेमतों भरी जन्नतें होंगी, नेमतों भरी जन्नतें होंगी, उनमें नहरें भी बह रही होंगी, और जन्नत हर एक अमल के मुताबिक होगी। किसी का रकबा बहुत वसी होगा, किसी का घर बड़ा खूबसूरत होगा, किसी पे हीरे और जवाहरात जड़े हुए होंगे, किसी पे मोती होंगे, है ना, किसी का चेहरा सूरज की तरह चमक रहा होगा, किसी का सितारे की तरह होगा, किसी का चांद की तरह होगा, कोई बहुत ही खूबसूरत होगा, है ना। और आप सोचें कि आप जन्नत की जो नेमते हैं और जन्नत जो है उसका अगर आप तारुफ पढ़ें तो कुरान मजीद बड़ा खूबसूरत उसका तारुफ देता है, हदीस से भी हमें पता चलता है कि नहरें शहद की भी हैं, जैसे नहरों का जिक्र है, दूध की भी है ना, और नहरें किसकी हैं, तस्नीम की भी हैं, जंजबील की भी हैं, आबे काफूर भी मिला हुआ है, तो बहुत सी नहरें हैं जो वहां पे चल रही होंगी ना, और नेमतों भरी जन्नतें। और आप देखें कि आप ईद पर, आप ईद ही को याद कर लें, ईद उल फितर गुजर चुकी और ईद उल जुहा आने वाली है, और इन मौकों पर आप बहुत सी दावतें खाते हैं, बहुत सी दावतें करते हैं, एक हलीम ही खाते हैं, हर जगह का हलीम का टेस्ट मुख्तलिफ होता है। आप बिरयानी खाते हैं, उसको ही लोगों ने 10 नाम रखे हुए हैं, कोई सिंधी कहता है तो कोई पंजाबी कहता है तो कोई मुगलियाई बिरयानी कहता है ना। तो यानी एक चावल है उसको पकाने के मुख्तलिफ अंदाज है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो उनके लिए नेमते होंगी तरह तरह की, आप रेशम ही देख लें, बारीक भी है और मोटा भी है ना। तो अल्लाह ताला ये नेमतों का जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि हम दुनिया में इन चीजों की वजह से नकद दिल हार देते हैं, एक चीज, एक दफा किसी के यहाँ घर को बुक कर रहा था और वो अपने घर की चीजें बेच रहा था, ठीक है, बेड और जो भी चीज वगैरह थी। तो एक दिन कोई एक औरत आके चीजें ले गई, दूसरे दिन दूसरी औरत आई तो कहने लगी कि हाँ ये इतनी अच्छी थी, ये उसने ले ली, मुझे पता चलता तो ये मैं ले लेती ना। हालांकि जो वो ले चुकी तो ये कहना चाहिए था कि अल्लाह उसके नसीब में करे ना, अपनी अपनी किस्मत है, चलो ले ली, सस्ती थी जैसी भी थी, लेकिन काश कि ये मैं ले लेती जो मतलब। और उसको ही कहा जिसने ली थी, और मैं खड़ी देख रही थी कि मैंने कहा वाह भी वाला, तेरी कुदरत की निशानियां देख कैसी जबरदस्त है, कि एक ले चुका वो क्या सोच रहा होगा, जिसको मिली नहीं वो कह रहा है कि मुझे मिलनी चाहिए जो तुझे मिल गई ना, और मुस्कुरा रही थी औरत। तो असल बात क्या है कि दुनिया की छोटी छोटी चीजें भी होती है ना, तो किसी को देखते हैं कहते हैं ये मेरे पास होती ना, मैं ऐसी होती ना, तो आप देखें कि दुनिया तो गुजर भी गई, गुजर ही जाएगी जैसे भी है, आखिरत में क्या बनेगा। तो उसके लिए हमें नेकियों में आगे बढ़ना चाहिए। और जो जन्नत में लोग होंगे वो बातें कैसी करेंगे, नेमते तो ऐसे ही मिलेंगी, नहरें खूबसूरत होंगी, बातें कैसी करेंगे। दावाहुम फीहा सुभानकल्लाहुम्मा, वहां उनकी एक ही सदा होगी, वहां उनकी जबान पर एक ही कलमा होगा, जन्नत में फीहा यानी जन्नत में क्या सुभान का, पाक है अल्लाह, अल्लाह तू पाक है। तो आप देख लीजिए कि जो नेक लोग हैं वहां पे वो ये दुआ करेंगे कि अहले जन्नत अल्लाह की हम्द और तस्बीह जो है वो हर वक्त करते रहेंगे। हदीस में आता है अहले जन्नत की जबानों पर तस्बीह और तहमीद का इस तरह इल्हाम होगा जिस तरह सांस इल्हाम किया जाता है, इसे ही मुस्लिम की रवायत है। आप देखेंगे सांस बेख्तियार चलता है ना, आप सोचते तो नहीं कि मैं सांस लूं, सांस खुद ब खुद आता है और जाता है। आप इनहेल भी करते हैं है ना, लेते भी हैं उसको बाहर खारिज भी करते हैं। तो इसी तरह अहले जन्नत की जबानों पर बगैर एहतमाम के, बगैर प्लानिंग के अल्लाह की हम्द और तस्बीह के तराने होंगे। फिर दूसरी बात क्या करेंगे अहले जन्नत, वह तहियतुहुम फीहा सलाम, और वहां उनकी दुआ ये होगी कि सलामती हो, वहां वो सलामती की का तोहफा देंगे, एक दूसरे को इस तरह सलाम करेंगे जिस तरह फरिश्ते एक दूसरे को सलाम करते हैं, एक ही बात करेंगे। और वो क्या है कि एक कामयाब और फतेहमंद टीम, जैसे आप देखें दो टीमें जो हैं वो खेलती हैं ना, फुटबॉल खेल रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, और इसमें जब जीत जाते हैं तो हर एक कह रहा होता है मुबारक 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 है ना, आप भी मुबारकबाद दे रहे हैं जो जीत गए हैं, आपस में एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं ना। आप उस मंजर को जरा तसव्वुर में लाएं, जीत गई है टीम, क्विज में कोई जीत गया है, किसी इम्तिहान में कोई फर्स्ट आ गया है, और फिर साथ में इंसान जो है उसको एक ही जुमला नजर सुनता सुनाई देता है कि मुबारक हो आपको, मुबारक हो, है ना, आप बड़े कामयाब रहे, आपके लिए तो बड़ी सलामती है। तो यहाँ भी ये जिक्र किया जा रहा है वह तहियातुहुम फीहा सलाम, कि उनकी दुआ ये हो कि सलामती हो, क्योंकि दुनिया की अलाइशें परेशानियां मुसीबतें उनसे बच बचा के जन्नत में पहुंच गए, और जन्नत में जहां हर तरफ सलामती ही सलामती है ना, और सलाम करना वो भी मुराद, और जन्नत सलामती है, जन्नत जो है वो दारुसलाम है, जन्नत का एक नाम दारुसलाम भी है। तीसरी बात यह है वह आखिरु दावाहुम, और उनका उनकी हर बात का खात्मा इस पर होगा, उनकी हर बात जो है उसका आखिर ये होगा अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। तो आप देख लीजिए कि अब आखिरी बात जो जन्नती करेंगे बातें करते करते, तो वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि हम्द और तारीफ जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है ना, अनिलहम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन। तो इसका मतलब ये है कि अहले जन्नत को जन्नत में पहुंचने के बाद अल्लाह ताला की मार्फत में तरक्की होगी, कि जन्नत में पहुंचकर तमाम अहले जन्नत को जो है वो इल्मो मार्फत का मकाम हासिल हो जाएगा। दुनिया में जो उलमा का मकाम है ना, और उलमा को वो मकाम हासिल होगा जो अम्बिया का है, और अम्बिया को वो मकाम हासिल होगा जो कि जैसे दुनिया में रसूल अल्लाह को हासिल है, اور رسول اللہ کو وہاں قرب خداوندی کا مقام حاصل ہوگا, ہے نا. تو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کو اسی کو کہتے ہیں کہ ان کو مقام محمود ملے گا, جس کے لیے ہم جنت, ہم اذان کی دعا کے بعد بھی ہم دعا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جنتی پہلا جملہ کیا بولیں گے, سبحانک اللہم, ہے نا. تو کوئی درخواست نہیں کریں گے, کوئی کچھ اور نہیں مانگیں گے, بلکہ یہ کہیں گے کہ پاک ہے اے اللہ تو, ہے نا. تو اور ہمیں جو ہے یہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے. جیسے ایک حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, جو بندہ میری حمد و ثنا میں ہر وقت لگا رہے, یہاں تک کہ اس کو اپنے مطلب کی دعا مانگنے کی بھی فرصت نہ رہے, تو میں اس کو تمام مانگنے والوں سے بہتر چیز عطا کروں گا, بن مانگے اس کے سب کام پورے کر دوں گا. اس حیثیت سے بھی لفظ سبحان اللہ, سبحانک اللہم, جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف ہے, اور یہ ایک دعا ہے. اور صحیح بخاری کی ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی تکلیف اور بے چینی پیش آئے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ یہ دعا پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ العزیز العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اور کہتے ہیں کہ سلف صالحین اس دعا کو دعائے کرب کہتے تھے, مصیبت کے وقت کی دعا, کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت نا اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگنی چاہیے. اس میں اللہ کی کامل حمد اور تعریف جو ہے وہ بیان کی گئی ہے, کہ ان الفاظ میں اللہ سے مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سبحانک اللہم اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے صفات جلال اور دوسری ہے صفات اکرام, ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ الحمدللہ جو ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر عیب اور برائی سے پاک ہے, ہے نا. سبحانک اللہم کہ اللہ پاک ہے, کہ اللہ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے, ہے نا. اور جو صفات اکرام ہے اس میں کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور برتری جو ہے اس کو کمال درجہ حاصل ہے, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, اس میں دونوں باتیں ہیں نا. تو سبحانیت جو ہے, سبحانک اللہ کہنا کہتے ہیں کہ یہ صفات جلال میں سے ہے, اور حمد و ثنا جو ہے اس کا بیان کرنا جو ہے یہ صفات اکرام میں سے ہے. تو اہل جنت شروع میں صفات جلال بولیں گے سبحانک اللہم, اور آخر میں صفات اکرام الحمدللہ رب العالمین. اور اہل جنت جب سبحانک اللہم کہیں گے تو جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا, جس کے نتیجے میں پھر الحمدللہ رب العالمین کہیں گے. تو بعض لوگ کہتے ہیں وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام, فرشتے ان کے ان پر سلامتی بھیجیں گے اہل جنت کے لیے. تو اب عمل کے لیے پھر اصول کیا نکلا, اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی حمد اور تعریف کیا کریں, تسبیح اور تذکیر جو ہے اس کو کیا کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ تسبیح اور تذکیر کی تین قسمیں ہیں, یعنی ذکر کرنے کی تین قسمیں ہیں, ایک ہے قلبی, دوسرا ہے لسانی, اور تیسرا ہے عملی. ایک تو دل میں اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا, دوسرا آپ بہت سے ذکر اذکار کرتے ہیں زبان سے, تیسرا یہ کہ اپنی پوری زندگی جو ہے اس کو اللہ کی بندگی میں ڈھال دیا جائے, عمل کیا جائے. اور سورۃ یونس کا جو یہ پہلا رکوع ہے, ایک سے لے کر جو دس آیتیں ہیں, اس میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کائنات اور کائنات کی نعمتیں اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کی دولت, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی گئی, تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو پہچاننا چاہیے, اور نتیجے میں توحید کو پانا چاہیے, فعبدون فعبدو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے, اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک رب اما یصفون, یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم وہی تعریف کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے نا, اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ हमारे अंदर जो भी कमी और कमजोरी है उसको माफ कर दे, और जो बेहतरीन बातें तू अपने एक मोमिन बंदे में देखना चाहता है हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता कर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।